ओम शांति। भगवान हमारा साथी है। कहाँ पलते हैं हम? कहाँ पल रहे हैं? गीत पे था ना, पलकों पे पलते हैं, भगवान के पलकों पे पल रहे हैं, ऐसा लगता है। पलकों पे पलना माना इतने प्यार बाबा हमें दे रहे हैं ना। पलकों पे किसको बिठाते हैं? जिनको हम बहुत प्यार करते हैं। पलकों पे बिठाना माना इतना केयरफुली, इतना प्यार से हम उनको संभालते हैं, है ना। तो बाबा भी हमें इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार से संभाल रहे हैं। और हम सभी आत्माओं का ये भाग्य है कि बाबा से डायरेक्ट ये संबंधों की अनुभूति करना। द्वापर युग से तो पुकारते आए हैं, बुलाते आए हैं, और ये भी कीर्तन में भी ये बोलते आए हैं कि तुम ही मात पिता बंधु सखा सब तुम हो, लेकिन वो संबंध हमने वहां जोड़ा नहीं। लेकिन यहां संगम युग में बाबा कहते बार बार, बहुत बार मुरलियों में ये बात आती है कि सर्व संबंधों से मुझे याद करो, एक भी संबंध छूट न जाए, है ना। तो लेकिन बहुत कंफर्टेबली हम केवल जो हमें पसंद है संबंध, या हम कंफर्टेबल हैं उस संबंध से बाबा को याद करते आए हैं। कल भी निर्मला दीदी ने ये बात कही थी कि सर्व संबंधों की अनुभूति यहाँ करके जाओ, जो संबंध हमने कभी तक अनुभव नहीं किया है उसको एक्सप्लोर करो, उसको अनुभव करने की कोशिश करें हम, है ना। क्यों सर्व संबंधों की अनुभूति करने के लिए बाबा बार बार कहते हैं, क्या होता है इससे? केवल अगर हम बाबा के गुणों के आधार से, कर्तव्यों के आधार से हम याद करते हैं, गुणों के आधार से माना वो ज्ञान का सागर है, सर्वशक्तिमान है, तो इसके आधार से हम याद करें और संबंधों के आधार से याद करें, तो उसमें डिफरेंस क्या है, उसमें अंतर क्या है, क्या लगता है आपको? गुणों के आधार से भले याद किया, लेकिन जब संबंधों के आधार से याद करते हैं उसका डेप्थ अलग है, उसकी गहराई अलग है, उसमें फीलिंग्स जुड़ी हुई है। केवल गुणों में या कर्तव्यों में ठीक है, लेकिन संबंधों के आधार से जब हम याद करते हैं उसमें भावनाएं जुड़ी हैं, और भावनाएं बहुत पावरफुल होती है, है ना। क्योंकि जहां भावनाएं जुड़ी है वहां बहुत सहज भी लगता है, अपने बच्चों के लिए माँ बाप क्या नहीं करते, लेकिन फिर प्यार है, संबंध है, इसीलिए उनको सहज लगता है। वही बात दूसरे बच्चों के लिए करने की कोशिश करें बहुत भारी लगता है, है ना। तो यहां भी बाबा को जब हम संबंध जोड़ते हैं बाबा के साथ, भावनाएं, है ना। रास्ते चलते किसी की भी एक्सीडेंट हो जाता है, अननोन कोई अजनबी व्यक्ति है, तो उसके लिए हमें बहुत बुरा नहीं लगता है, लेकिन वही उसी जगह पर अगर मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड है या फिर ऐसे संबंधी है तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो बहुत बुरा लगता है, उसको मतलब कंसर्न रहता है, वो ठीक हुए नहीं हुए उसके बारे में सोचते रहते हैं, बार बार उनको फोन करते हैं, या मतलब थोड़ा सा चिंता लगी रहती है। क्यों? क्योंकि संबंध है, है ना। और संबंध जब हम अनुभव करते हैं वहां इमोशनल स्टेबिलिटी आ जाती है, माना भावनात्मक स्थिरता। जो IQ, EQ और SQ की बात हम बहुत करते हैं टॉक्स में ना, बाहर वाले लोगों के साथ, ये भावन EQ क्या है, भावनात्मक स्थिरता, है ना। तो ये भावनात्मक स्थिरता संबंधों के आधार से आता है। अगर वो स्थिरता नहीं है तो फिर छोटी छोटी बातों में रूठना, रूसना, नाराज हो जाना, रोना, ये सारी बातें आ जाती है। तो वहां स्थित प्रज्ञ अवस्था नहीं है। बाबा क्या चाहते हैं? निंदा, स्तुति, मान, अपमान जो भी हो, वहां एकरस स्थिति हो। तो एकरस स्थिति आती है भावनात्मक स्थिरता से। छोटी बात में डिप्रेशन में चले जाना, छोटी बात में बहुत गुस्सा कर देना, एंजाइटी, टेंशन, ये सब बातें भावनाओं के साथ जुड़ी हुई है, है ना? इसीलिए अगर बच्चों को देखते हैं, बच्चों के अगर उनके घर में माँ बाप लड़ाई झगड़े करते हैं, उनका मना शांति नहीं है, वहां प्यार नहीं मिल रहा है, बड़े होकर के वो उनके संस्कार बहुत ही अग्रेसिव हो जाता है, बहुत ही अलग तरीके से हो जाता है। प्यार, माँ बाप का प्यार, मतलब हर एक प्रकार के प्यार की जरूरत होता है बच्चे को, तब जाकर के धीरे 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 18 साल तक वो फिर भावनात्मक स्थिरता आती है उनमें। लेकिन हम आत्माएं कितने साल से इस धरती पर है, कितने साल से धरती पर है? 5000 साल से है, और उसमें 2500 वर्ष ठीक था। सत्ययुग त्रेता युग में हमारे संबंध बहुत अच्छे थे हर एक के साथ, वहां सुख शांति समृद्धि थी। लेकिन द्वापर युग से हम दुख उठाना शुरू किया, कहीं ना कोई ना कोई संबंध से, कोई ना कोई व्यक्ति से दुख लेना शुरू हो गया। और वो जो दो दुख लेते आए हैं द्वापर युग से, दिया तो वो ठीक है, लेकिन जो लेते आए हैं वो कहाँ स्टोर हुआ है, कहाँ स्टोर हुआ है? हमारे संस्कारों में, है ना? हमारे संस्कारों में इतना भरा पड़ा है, उसके कारण से हम कभी कभी जो नहीं बोलना चाहते हैं वो बोल लेते हैं, जो नहीं करना चाहिए वो कर लेते हैं। तो वो कहाँ से आ रही? इतने पुरुषार्थ कर रहे, इतना ज्ञान सुन रहे, इतना योग कर रहे हैं, फिर भी वो चीज कहाँ से आ रहा है? वो संस्कार इतना गहरा है, आधा कल्प से 63 जन्मों का जो संस्कार है वो इतना गहरा है, उसको हील कब करेंगे, कैसे करेंगे? दुख है ना, दुख से ऐसा उठा करके फेंक नहीं सकते, उसको हील करना पड़ेगा, उसको ठीक करना पड़ेगा, वो दुख है इतना, है ना? तो हील करने का एक ही उपाय है, बाबा के साथ प्यार का अनुभव। वैसे तो कहते हैं दुनिया में लव हील्स, प्यार में इतनी शक्ति है जो बहुत सारी चीजों को वो हील कर लेता है, लेकिन यहां भगवान का प्यार, इंसान के प्यार में ही इतना ताकत है, तो भगवान के प्यार में इतना कितना ताकत ना होता, है ना? तो ना केवल इस जन्म के दुख, लेकिन जन्म जन्मांतर के जो दुख हैं संस्कार में, उसको हमें ठीक करने की जरूरत है। क्योंकि अगर कहीं भी वो दुख के संस्कार रह गए तो क्या होगा, दुख के संस्कार रह गए तो क्या होगा? सत्ययुग के वैसा नहीं मिलेगा, है ना? सुखधाम है ना वो, तो है ना, सुखधाम में अगर जाना है तो सुख का संस्कार इतना भर लेना चाहिए, इतना भर लेना है हमारे अंदर, वो दुख के नाम निशान ना हो, कोई अंश भी ना रहे दुख का, है ना? तो वो होगा बाबा से सर्व संबंधों की अनुभूति से। दो हफ्ते पहले बाबा के अव्यक्त मुरली जो चली थी, आप सभी को याद होगा कि बाबा ने तीन बात कही थी, संबंधों की अनुभूति, फिर दूसरी बात है प्राप्ति, और तीसरी बात है तृप्ति। हम आत्माएं संतुष्ट या तृप्त कब हो सकते हैं? जब हमारा सर्व ये प्राप्तियां हैं, सर्व शक्तियों के, सर्व गुणों के, सर्व संबंधों के प्राप्ति जब है तब तृप्त हो सकते हैं। और प्राप्ति कब होगा? सर्व संबंधों की अनुभूति, अनुभूति केवल बोलने की बात नहीं है, बाबा मेरा पिता है, वो माँ है, नहीं, कहाँ तक अनुभव किया है, अनुभव अनुभूति कहाँ तक किया, वो अंदर से मैं अंदर से मानूं कि हाँ सचमुच भगवान मेरा पिता है। जैसे बचपन से बोला जाता ये मेरे तुम्हारे पिता है, ये तेरी माँ है, तो अंदर बैठ गया ना, हाँ माँ बोलते ही लौकिक माँ की याद आती है, पिता बोलते ही लौकिक पिता की याद आती है ना, वो संस्कार में बैठ गया है वो संबंध, है ना। तो ऐसे ही क्या बाबा के साथ जो संबंध है वो भी हमारे संस्कार में भरा पड़ा है। जब भी मैं पिता बोलूं या बाप बोलूं तो क्या शिव बाबा याद आता है, माँ बोलूं तो क्या शिव बाबा याद आता है। तो इतना डीप संबंध, गहरा संबंध बाबा के साथ, अभी नहीं तो कभी नहीं। फिर संगम युग का समय ऐसा समय है जो हम इतना डीप संबंध भगवान के साथ अनुभव कर सकते हैं, और सारे कल्प में बाबा नहीं मिलने वाला है, है ना। तो अगर आपके घर में कोई वीवीआईपी आ रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई गुलजार दादी, मान लीजिए गुलजार दादी आपके घर में आ रहे हैं या सेंटर पे आ रहे हैं, तो क्या करेंगे आप? आपको पता चल नेक्स्ट वीक संडे आ रहे हैं तो क्या करेंगे आप, क्या करेंगे? पूरा पूरा फोकस उसी पर रहेगा। जो भी अगर इम्पोर्टेंट मीटिंग्स है, कोई और दूसरा काम है, कहेंगे नहीं दादी आके जाने के बाद कर लेंगे, जो भी बात है तो बाद में होगा, पूरा फोकस उसी पे रहेगा। दादी आने के बाद हम क्या करेंगे, उनके खातिरदारी में क्या करेंगे, ये करेंगे, वो बहुत प्लानिंग चलता रहेगा। दादी आके जाने तक कोई और अपॉइंटमेंट्स हम लेंगे नहीं। अभी आपके पास कौन आया है? स्वयं भगवान है, और ये भगवान कुछ सालों तक है, बस कुछ समय तक है, क्योंकि जैसे हम समय को देख रहे हैं उनका पाठ बदल रहा है, राइट, इतना बदल गया है। और कितना समय है, गिन चुन करके भी कितना समय हो सकता है जो हम बाबा के साथ रह सकते हैं यहाँ, है ना। तो ये जो अमूल्य समय है, इस समय पे क्या हम पूरा फोकस, हमारा पूरा फोकस बाबा पर है, या अभी तक भी दूसरे लोगों पर, दूसरे आत्माओं पर, सगे संबंधियों पर, या फिर कोई कर्तव्य जो काम है उस पर अभी तक हमारा फोकस है? क्योंकि सारे कल्प में तो ये आत्माएं आएंगे ही हमारे साथ, है ना, वो तो रहेंगे ही, अलग अलग नाम रूप से रहेंगे, रहेंगे तो सही ये सभी आत्माएं, लेकिन शिव बाबा अभी है और बाद में हमारे साथ नहीं है। इसके वैल्यू को समझना चाहिए, जितना लूट सके, जितना अनुभव कर सके, जितना हम सुख की अनुभूति कर सके हमें कर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत कम समय है, है ना। तो इस समय में एक एक संबंध की अनुभूति करते हुए क्या क्या अनुभूति हम कर सकते हैं, हम वो बात देखते हैं, है ना। तो सबसे पहली बात, और अक्सर मेजॉरिटी लोग बाबा के साथ पिता का संबंध जोड़ते हैं, मेजॉरिटी सभी, पिता ठीक है, शिव बाबा वो कोई तक मतलब प्रॉब्लम नहीं होता, कोई मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगता है बाबा के साथ पिता और बच्चे के संबंध जोड़ने के लिए, है ना। लेकिन अनुभूति क्या हुआ, अनुभूति क्या हुआ, क्या होता है? लौकिक पिता से आपको क्या मिलता है और पारलौकिक पिता से आपको क्या मिलता है? लौकिक पिता से वर्षा मिलता है, वर्षे के साथ साथ लौकिक पिता से हमें शक्ति मिलती है, मतलब सिक्योरिटी, सिक्योरिटी है कि हाँ मेरा पिता है, तो निश्चिंत है, सिक्योर्ड है, शक्ति अनुभव होता है। तो ऐसे ही पारलौकिक पिता से तो हम वर्षे की अनुभूति करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ क्या बाबा को याद करते हमें ये महसूस होता है कि मैं भी शक्तिशाली हूँ, मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। संबंध साथ है, मेन जो संबंध है बाबा के साथ हमें जोड़ना है वो साथ संबंध है। आपको याद है कौन कौन सा संबंध? पिता, माता, टीचर, सदगुरु, सखा, साजन या स्वामी और बच्चा, है ना? बाबा हमारा बच्चा। तो ये सात जो संबंध है मेन संबंध है। लेकिन दो वीक के पहले जो मुरली चली थी तो उसमें बाबा ने ये भी बोला था कि दादा दादी नाना नानी दादा इसका भी संबंध बाबा के साथ जोड़ना है, है ना? क्यों बाबा ये कहते हैं? क्योंकि अलग अलग संबंधों के जो प्यार का फ्लेवर है ना वो अलग अलग है। हाँ, माता का प्यार अलग है, पिता का प्यार अलग है, भाई बहनों का प्यार अलग है, दादा दादी नाना नानी का प्यार अलग है। हर एक के प्यार का फ्लेवर अलग अलग है, है ना? और फ्लेवर अलग अलग है लेकिन उसके साथ साथ जो प्राप्तियां हैं वो भी हमारे अलग अलग है। तो अगर हम ये देखें सात संबंधों का कनेक्शन आत्मा के सात गुणों के साथ करें। आत्मा के सात गुण कौन से हैं? जो बेसिक है, शांति, सुख, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति, है ना? ये सात गुण हैं और सात संबंध हैं। तो उनके साथ हम कनेक्ट करें। तो पिता से शक्ति की अनुभूति होती है, प्रैक्टिकली भी अनुभव होता है ना, तो वो अनुभव मेरा कितना गहरा है अनुभूति। पिता कहते वर्षा तो प्राप्ति है, मुक्ति जीवन मुक्ति गति सदगति का वर्षा प्राप्त है, लेकिन उसके साथ साथ गहरा अनुभव पिता का छत्र छाया, पिता के अंगुली पकड़ करके जितना मैं चल रही हूँ सुरक्षित हूँ, कोई चिंता नहीं है, चिंता से दूर हो सकते हैं पिता के साथ संबंध जोड़ने से। अपने आप को देखिए कि जब भी परेशानी आती है, जब भी कोई समस्या आती है, इमीडिएटली किसकी याद आती है? किसकी याद आती है? कोई इंसान को ढूंढते हैं मदद करने के लिए, या फिर तुरंत मेरी बुद्धि बाबा के पास जाता है? ये हमें अभ्यास करना है। समस्या जब भी कुछ आए, इमीडिएटली मेरी बुद्धि बाप, क्योंकि जो भी समस्या आने वाली अचानक चल रहे, अचानक अगर मान लीजिए अगर एक्सीडेंट हो गया, तुरंत बुद्धि कहाँ गई? या फिर ये उसमें उलझी रही कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसा नहीं होना चाहिए था, उसमें उलझी रही बुद्धि? या फिर एक सेकेंड में मेरी बुद्धि बाप के पास चली गई? तो वो बुद्धि बाप के पास जाते ही क्या होगा, बाबा कोई ना कोई आत्मा को निमित्त बनाते हैं हमारी मदद करने के लिए, है ना? तो बाप कैसे मदद करते हैं, बाबा हमें कैसे मदद करते हैं? वो खुद नहीं आ सकते हैं ना, वो तो निराकारी है ना कोई को निमित्त बना लेते हैं, कोई ना कोई परिस्थिति ऐसा हो जाता है, कोई निमित्त बन जाता है मेरी मदद करने के लिए। लेकिन बुद्धि उस व्यक्ति में नहीं, लेकिन फिर बाप में, है ना? तो ये अभ्यास अगर करना है तो बार बार संबंध ये इतना गहरा हो जाए बाबा के साथ, तो कोई और मेरे संसार में नहीं। हाँ ठीक है, जो सेवा के हिसाब से जो कनेक्शन में आना है तो वो बहुत जरूरी है, वो तो आना ही है, लेकिन मेरे संसार में और कौन है बाबा के अलावा? इतने मेरे संसार में बाबा को इतना भर लेना है किसी और व्यक्ति के लिए जगह ही ना रहे। मेरे और बाबा के बीच में अगर जगह है माया को आने के लिए मार्जिन है, लेकिन मार्जिन ही नहीं छोड़ा, मेरा संबंध इतना डीप है बाबा के साथ, तो फिर कोई आ नहीं सकता, है ना। तो दूसरा संबंध माँ, माँ से क्या मिलता है? प्रेम मिलता है और पालना मिलती है और निस्वार्थ प्यार मिलता है। और सात गुणों में से अगर देखा जाए, हाँ जी, आनंद, सुख, शांति, अलग अलग मनन चिंतन कर लीजिए जो भी है, मना अलग अलग आप ये सोच सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से माँ से क्या मिलता है? शांति। क्यों? बच्चा जाकर के माँ की गोदी में निश्चिंत होकर के सो जाता है, क्योंकि उसको पता है मेरी माँ है ना यहाँ मेरी सुरक्षा करने के लिए, मेरी देखभाल करने के लिए। तो ऐसे शिव बाबा मेरी माँ, उस माँ से मैं शांति की अनुभूति इतना करूं, केवल मैं ये सोचूं कि बाबा शांति का सागर है, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, इसके तुलना में अगर ये मैं सोचूं कि बाबा मेरी माँ, और उनसे मुझे शांति की अनुभूति हो रही है, माँ के गोद में निश्चिंत हूं, कोई संकल्प नहीं है, तो वो अनुभव कितना गहरा है, है ना। तो इसीलिए वो संबंध, इसीलिए कह रही बार बार कि संबंधों की अनुभूति से गुण भी गहरा अनुभव होता है, गहरा अनुभव होता है ना। और तीसरा संबंध टीचर, टीचर से क्या मैं, और उसके पहले मैं ये कहूँ कि माँ के बारे में दादी जान की हमेशा माँ के पांच माँ कहते हैं हमारे, कितने माँ आपके पास? बाप तो तीन है ना, माँ कितने हैं? पांच माँ है। कौन कौन है पांच माँ? एक है शिव बाबा माँ, ब्रह्मा माँ, मम्मा माँ जगदम्बा सरस्वती माँ, ड्रामा माँ, लौकिक माँ, है ना। तो ये पांच माँ है, और उसके अलावा भी और ऐड करते जाओ, गो माँ है, भू माँ है, वो सब अलग है, लेकिन पांच जो है, कितने भाग्यशाली है, तीन पिता और पांच माँ है सभी को, कितनी पालना, कितना प्यार, कितने शक्ति की अनुभूति होता है। तीसरा संबंध है टीचर का संबंध, टीचर से ज्ञान की प्राप्ति, है ना। ये जब हम संबंध जोड़ते हैं, पर्टिकुलरली टीचर का संबंध, तो फिर ज्ञान के लिए हमारे बहुत वैल्यू बढ़ जाता है। कोई मुरली, जब मुरली का क्लास होता है तो उसके भी बहुत बड़े वैल्यू है, तो समय पर आएंगे, क्योंकि उसका वैल्यू है कौन आकर के पढ़ा रहे हैं, ये स्मृति में है कि स्वयं भगवान आकर के, स्वयं ज्ञान का सागर आकर के मेरे लिए खास ये पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। तो ये जब होगा तो ज्ञान के लिए भी मेरा वैल्यू बढ़ जाता है, उसके प्रति जो रुचि है वो बढ़ जाता है, और एक एक ज्ञान के जो पॉइंट है वो रत्न समान बाबा कहते हैं, है ना। तो एक एक रत्न के लिए मुझे वैल्यू है उसका, है ना। तो ज्ञान के सागर बाप खुद आकर के इतना ज्ञान दे रहे हैं, और कौन सा ज्ञान दे रहे हैं? आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, सृष्टि चक्र का ज्ञान, कर्म का ज्ञान, इतना सारा ज्ञान दे रहे हैं आत्मा को तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनाने के लिए। कभी कभी ना इस ज्ञान को हम बहुत लाइटली ले लेते हैं। साकार मुरली में बाबा वही बात करते हैं, आत्मा को आत्मा समझो, मुझ बाप को याद करो, वही बात करते हैं। कभी कभी साकार, जो पुराने साकार मुरलियां होती थी ना, जो अभी तो एडिटेड है, राजू भाई बहुत कुछ वर्ड्स निकाल देते हैं, बहुत रॉयल भाषा है अभी, लेकिन पहले बाबा डांट भी लगाते थे, ऐसे ऐसे शब्द बोलते थे कि बोला ये भगवान का महावाक्य है, बाबा क्यों ऐसे कर कहते हैं। पॉलिश्ड नहीं होता था उनकी भाषा, अव्यक्त मुरली जो भाषा है बहुत पॉलिश्ड है, लेकिन साकार जो ओरिजिनल जो साकार मुरलियां हैं वो पॉलिश्ड बिल्कुल नहीं था, राइट। तो क्यों ऐसे था? क्योंकि बाप बच्चों से बात कर रहे हैं, टीचर स्टूडेंट से बात कर रहे हैं, हमारा संबंध इतना गहरा है। तो कभी कभी आप अपने बच्चों को डांट लगाते हैं ना, क्यों लगाते हैं? सही रास्ते पर चले, अपना समझ करके वो डांट लगाते हैं, टीचर भी स्टूडेंट्स को डांट लगाते हैं, क्यों? अपना समझ, स्टूडेंट सुधर जाए। तो इसीलिए, तो जब वो संबंध हम समझ जाएंगे ना, तो डांट नहीं लगता, डांट में भी हमें प्यार दिखाई देता है ना। तो इसीलिए जब बाबा को टीचर के साथ, टीचर का संबंध हम जब जोड़ते हैं, तो जो भी डांट में मिलता है वो प्यार दिखाई देता है। और एक एक जो ज्ञान के पॉइंट है, मुरली का पॉइंट है, तो उसका वैल्यू हमारा बढ़ जाता है ना। और चौथा संबंध सद्गुरु का संबंध, लौकिक गुरु और सद्गुरु, शुबाबा गुरु, क्या अंतर है? वो गुरु केवल वर्तमान समय थोड़ा बहुत ज्ञान सुना सकते हैं या मार्गदर्शना दे सकते हैं, लेकिन शुबाबा जो सद्गुरु है, गति सदगति देते हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं, ना केवल रास्ता बताते हैं लेकिन लेके भी जाते हैं, साथ साथ लेके चलते हैं। और इस सद्गुरु से कौन सा गुण मिलता है? कौन? पवित्रता की शक्ति, है ना। सद्गुरु से पवित्रता की शक्ति मिलती है, और ना केवल शक्ति लेकिन वरदान। वरदानों की अनुभूति जब हम करते हैं तो हर चीज, हर ज्ञान बहुत सहज होने लगता है। कोई भी बात आपको तकलीफ हो, बहुत मुश्किल लग रही है, मान लीजिए पवित्रता का सूक्ष्म, क्योंकि पवित्रता का जो परिभाषा है हमारा बहुत सूक्ष्म है, केवल ब्रह्मचर्य की बात नहीं है ना, सूक्ष्म बहुत चीजें हैं। तो अगर मुझे बहुत मुश्किल हो रहा है तो क्या करें, उसको सहज कैसे बनाए? बाबा से रोज वरदान ले, है ना। जब बाबा कहते हैं वरदान बहुत सहज बना देता है, पुरुषार्थ सहज बना लेता है, ये बहुत लाइटली लेने की बात नहीं है। हर रोज सुबह उठकर कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, कोई भी एक धारणा की प्रॉब्लम आ रही है, तो वो पर्टिकुलर कनेक्टेड जो वरदान है, हर रोज सुबह जब हम उठते हैं, उठते ही बाबा से वरदान ले, पवित्र भव, योगी भव, पवित्र भव। केवल एक दिन दो दिन नहीं, लगातार कुछ दिन तक, जब तक वो संस्कार, वो जो गुण है मेरा संस्कार ना बन जाए, तब तक लगातार रिपीटेडली हमें वो करने की जरूरत है। वो क्यों रिपीट क्यों करना है? जैसे बचपन में नहीं, नर्सरी केजी में जब बच्चे लिखने करते हैं, तो जब लिखना शुरू करते हैं तो बच्चों के लिए क्या कहते हैं, एक एक जो शब्द है कहते हैं 20 बार रिपीट करो, 20 बार लिखो एक ही बार, एक ही शब्द, ताकि उसका हैंड राइटिंग जम जाए, अच्छा हो जाए, है ना, वो पर्टिक वो ठीक हो जाए। ऐसे ही, क्योंकि हम सब कुछ भूल चुके हैं, फिर से वो संस्कार में पक्का हो जाए, इसके लिए बार बार रिपीट करने की जरूरत है। जब तक रिपीट नहीं करेंगे वो संस्कार में जमेगा नहीं, आएगा नहीं, है ना। तो इसीलिए बाबा साकार मुरली में वही बात क्यों करते हैं, क्योंकि अभी तक हमारा संस्कार नेचुरल नहीं बना है। इसीलिए रिपीट करने की जरूरत है। और वरदान के रूप में जब हम उस बात को लेते हैं बाबा से, वो बहुत सहज हो जाता है। और बाबा हमारी मदद करने के लिए तो बैठे हैं, है ना, हमारी मदद नहीं करेंगे तो किसकी मदद करेंगे, है ना, मदद करने के लिए बैठे हैं। बाबा बहुत मुरलियों में ये भी कहते हैं मुझे यूज करो, वैसे तो लोगों को यूज करते हैं तो मुझे यूज कर रहे हैं लोग, बहुत बुरा लगता है, यूज कर लिया फेंक दिया, है ना, जब चाहिए था पूछ लिया कुछ ले लिया और फिर पूछा भी नहीं मेरे को, तो बहुत बुरा लगता है, लेकिन बाबा को बुरा नहीं लगता कभी। बाबा और ही उल्टा कहते हैं कि मुझे यूज करो, मैं बैठा हूं तुम्हारी मदद करने के लिए, लेकिन हम यूज नहीं करते। तो इसीलिए बार बार बाबा के पास जाने की आदत डालें। संबंध कैसे हम बढ़ा सकते, कांटेक्ट, जितना हमारा कांटेक्ट होगा उतना संबंध गहरा होगा, है ना, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड कहते हैं। हमारे आंखों के सामने अगर कोई होता नहीं ना तो उनको भूल जाएंगे हम, है ना, अगर आंखों के सामने है तो उनके साथ संबंध हमारा बना रहता है। ऐसे ही यहां भी बाबा के पास बार बार जाने की आदत, कोई बार बार आपके पास आए तो आप तो तंग हो जाएं, लेकिन बाबा तो तंग नहीं होता, हर छोटी छोटी बातों के लिए बाबा के पास जाकर के करेंगे। तो जब जितना हमारा कांटेक्ट होता है, जितना कनेक्शन होगा, जितने बार कनेक्शन होगा बाबा के साथ, उतना गहरा होता जाएगा संबंध, है ना। सदगुरु का भी ऐसा है, तो सदगुरु के पास भी सदगुरु से क्या मिलता है, गाइडेंस मिलता है, श्रीमत मिलती है। मेन श्रीमत तो है ही है जो मुरलियों में मिलता है, आत्मा समझो, बाप को याद करो, या जो भी बात, जो मेन धारणा की बात है मुरलियों में तो मिलता ही है वो श्रीमत। लेकिन जो रूटीन में हमारे जीवन में जो भी बातें आती है, जो भी समस्याएं आती है, तो क्या करें, मतलब हर बात को बाबा से पूछने की आदत डालें, हर बात। बहुत सुंदर अनुभव होता है रास्ते चलते, बहुत मुझे अनुभव, मतलब ऐसा अनुभव होता है कि जैसे चल रहे हैं, कोई ट्रैवल कर रहे हैं, वहां कोई कंफ्यूजन हुआ क्या करना है, ये नहीं करना है, वो करना है, एक मिनट, एक सेकंड में बाबा के पास बुद्धि ले गए, क्लियर डायरेक्शन मिले, ना ये करो बस। उसके लिए बाबा के कमरे में भी जाने की जरूरत नहीं है, वो तो रूटीन में तो जाते ही है दिन भर, लेकिन ऐसा कनेक्शन मेरा हो बाबा के साथ, कोई स्थूल आधार ना हो, हाँ मैं बाबा के कमरे में ही बैठूं तभी मेरा कनेक्शन अच्छा हो, या फिर क्लास में बैठूं तभी मेरा कनेक्शन अच्छा हो, नहीं, चलते फिरते मेरा कनेक्शन हर सेकंड बाबा के साथ अच्छा हो, जब भी चाहे मैं बाबा के पास जा सकती हूँ, बुद्धि को ले जा सकती हूँ और मुझे उत्तर मिलता है, ऐसा संबंध हो बाबा के साथ, है ना। सदगुरु, ऐसे गाइडेंस मिले, ऐसे गाइडेंस लेके चले बाबा से, और ये हमेशा ब्राह्मण जीवन में हम हमेशा सोचे कि मेरा नहीं, बाबा क्या चाहते हैं मेरे से, है ना, बाबा क्या चाहते हैं मैं करूं, वो बात करो, वो कर्म करो, नहीं मेरी इच्छा नहीं, नहीं बाबा इस बात में, इस परिस्थिति में बाबा क्या चाहते हैं। हर बात बाबा के साथ जब हम कनेक्ट करते हैं तो हमारा कर्म भी श्रेष्ठ होना शुरू हो जाता है, है ना। और नेक्स्ट संबंध सखा का संबंध, है ना, जो पहले चार संबंध थे, मात पिता टीचर और सद्गुरु का जो संबंध है वो केवल लेने का संबंध है। इन चार संबंधों को क्या देंगे आप, लेने का संबंध है, लेकिन सखा का संबंध लेन देन दोनों होना चाहिए। अगर फ्रेंडशिप निभाना है, फ्रेंडशिप डेवलप करना है किसी व्यक्ति के साथ, तो केवल मैं मदद लेती रहूं उस फ्रेंड से वो फ्रेंडशिप टिकेगा नहीं, लेन देन दोनों बराबरी होनी चाहिए। और फ्रेंडशिप तभी होता है जब बराबर है लोग, सोचने की बराबरी या स्टेटस की बराबरी, कोई ना कोई बराबरी होनी चाहिए तब हमारा फ्रेंडशिप होगा। तो बाबा के साथ हमारी बराबरी क्या है, प्रेम क्या बराबरी है बाबा और मेरे अपने में, एक है स्वरूप, बाबा भी बिंदी मैं भी बिंदी, स्वरूप में समानता। दूसरा है धाम, मेरा घर परमधाम, शिवाबा का भी घर परमधाम, दोनों का घर एक ही है, तो वहां बराबरी हो गई। और तीसरी बराबरी गुण, भले वो सागर है लेकिन हम गागर हैं, है ना, भले वो सागर है लेकिन थोड़ा तो है, एकदम जीरो नहीं है, उनके संतान है, तो गागर तो जरूर है। तो तीन बराबरी होने के कारण हमारा फ्रेंडशिप हो सकता है, राइट। तो ये इस फ्रेंडशिप में बाबा से ले क्या और बाबा को दे क्या, बाबा कहते हैं मैं तो कौड़िया लेकर के रत्न देता हूं, मैं तो कांटे लेकर के फूल देता हूं, तो बाबा को दे क्या फिर, हम केवल जो चीची चीज है वही दे दे, अच्छी चीज भी तो देना चाहिए बाबा को। चीची चीज देने के लिए बहुत मतलब बहुत आतुर हो जाता है, हाँ ठीक है ले लो बाबा कोई बात नहीं। अगर अपने आप को चेक करो, अगर 6-8 एप्पल्स पड़े हैं वहां आपके पास, राइट, सेब पड़े हैं, तो अगर किसी को देना है, सभी आपके हैं, राइट, तो आपके हैं, अगर कोई आता है तो मुझे एप्पल चाहिए बोलेंगे, तो उसमें से जो खराब है वो निकाल के देंगे या अच्छे वाला निकाल के देंगे, अपने आप को देखो आप। व्यक्ति कौन है वो भी डिपेंड करता है ना। मुझे बहुत प्यारा है तो फिर अच्छा वाला देंगे, तो थोड़ा सा ऐसे ऐसे तो खराब वाला दे देंगे, ऐसे खराब वाला देने में बहुत ना जल, जो नहीं चाहिए होता है ना वो देने में हमें प्रॉब्लम नहीं होता, जो मुझे चाहिए होता है तभी भी क्या मैं दे सकती हूं। मान लीजिए मेरा पेट भरा है, अभी कहें कि ठीक है भोजन जो भी है आप खा लो, मुझे भूख लगी है, मैं भोजन पे बैठी हूं, तो वो 4 लोग और आ जाए, उनको देने के लिए तैयार हूं, खुद को भूख लगी है, जब मुझे जरूरत है, लेकिन फिर भी क्या मुझे निकाल करके। वो तो हुई स्थूल बात, लेकिन जो सूक्ष्म बात है बाबा के साथ, जो अटैचमेंट्स है, वो भी क्या बाबा को अर्पण करने के लिए तैयार है, चाहे लोगों के प्रति अटैचमेंट्स है, चाहे मेरे कमी कमजोरियों के प्रति अटैचमेंट्स है, जो भी अटैचमेंट है, क्योंकि मुझे बहुत प्रिय है, भले वो गलत है लेकिन मुझे बहुत प्रिय है, उसको निकाल करके बाबा को अर्पण करना ये पॉसिबल है। अपने को देखना है कौन सा अटैचमेंट है मेरा जो बहुत प्रिय लगता है और वो गलत है ना, क्योंकि जब तक उसको नाम नष्ट नोमोह नहीं बनेंगे, स्मृति लब्धा भी नहीं बनेंगे, बाबा को संसार नहीं बना सकते हैं, तो इसलिए ऐसी जो चीज है, व्यक्ति है, जो भी चीज, वो देखना अपने आप में कौन सी बात है जो मैं बाबा को अर्पण करूं। भक्ति मार्ग में भी ये गायन है ना, जो यात्रा में जाते हैं तो कोई ना कोई चीज वो छोड़ के आते हैं, बहुत जो अच्छी लगती है, जैसे उनको जैसे प्याज खाना अच्छा लगता हो या कुछ भी खाना, बैंगन खाना अच्छा लगता, जो भी है वो चीज वहां त्याग करके आते हैं लोग, है ना। तो हम भी जो अच्छी लगती है बाबा के अनुसार तो वो गलत है और कौड़ी है, वो पत्थर है, कांटा है, लेकिन मुझे बहुत प्यारा है, वो भी बाबा को देंगे तो खुदा दोस्त उसमें मदद करेंगे, है ना। तो खुदा को जब हम दोस्त बनाते हैं, बाबा को जब हम दोस्त बनाते हैं, दिल के हाल हम बाबा के साथ शेयर करते हैं। जो भी बात है अंदर, जो भी है दुख की भावना, जो भी बातें हैं बाबा के साथ शेयर करते हैं, क्योंकि वो संबंध है, फ्रेंडशिप है बाबा के साथ। वो ऑफिशियल संबंध हमारा नहीं है, तो पूरी दुनिया के लिए वो भगवान है, लेकिन मेरे लिए वो मेरा दोस्त है ना। तो ये जो अनऑफिशियल संबंध हमारा होना चाहिए बाबा के साथ, बहुत ही हार्ट, बहुत ही जिगर से, बहुत दिल का जो संबंध है वो होना चाहिए बाबा के साथ। हाँ, रेस्पेक्ट तो है, रेस्पेक्ट भी रखना है, लेकिन संबंध भी गहरा होना चाहिए। कहीं कहीं बार क्या होता है दुनिया में, संबंध जब क्लोज होना लगता होने लगता है ना, रेस्पेक्ट कम होने लगता है। नहीं, रेस्पेक्ट भी ऐसा हो लेकिन संबंध भी गहरा हो, ये बात हम मम्मा से सीखते हैं, है ना। मम्मा बाबा के सामने कभी नहीं बोलते थे, इतना रेस्पेक्ट रखते थे बाबा के प्रति मम्मा, है ना। मुरली क्लास में भी छोटे हॉल में बाबा मुरली सुनाने से पहले मम्मा बोलते थे, कुछ ज्ञान सुनाते थे, लेकिन जैसे ही बाबा आने का जो आवाज आता था मम्मा चुप हो जाते थे। दूसरी दादियां भले बाबा के साथ हंसी मजाक करते, क्योंकि पिता और बच्चे का संबंध है, लेकिन मम्मा कभी हंसी मजाक बाबा के साथ नहीं किया। तो ये रेस्पेक्ट हमेशा उनके अवेयरनेस में था, हमेशा उनकी स्मृति में था, ये कौन है ना। तो हमेशा हमारे इसमें भी रहे कि बाबा मेरा कौन है, तो स्मृति रहेगा, रेस्पेक्ट भी रहेगी, लेकिन संबंध भी गहरा रहेगा। तो इसलिए खुदा को दोस्त बना के देखिए, बहुत आनंद आता है ना। और नेक्स्ट संबंध है बाबा के साथ स्वामी या साजन का संबंध, है ना। और दोस्त के साथ हाँ, कौन सा गुण मिलता है दोस्त से? सुख की अनुभूति, सुख की अनुभूति होगी, क्योंकि दोस्तों से मिलते हैं तो खुशी मिलती है, खुशी होती है ना। तो बाबा से जब हम दोस्त का संबंध जोड़ते हैं, सुख की अनुभूति, इतना सुख होता है, आंतरिक सुख, अतीन्द्रिय सुख, केवल इंद्रियों के आधार से सुख नहीं, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति बाबा दोस्त, खुदा दोस्त से मिलता है। और नेक्स्ट संबंध स्वामी या साजन, इस संबंध से प्यार, प्रेम, है ना। ये प्रेम जो है इतना गहरा है, इतना हमको ऊपर उठाने वाली है। जैसे इंग्लिश में कहते हैं, जब प्यार में वो होते हैं लोग, दे फॉल इन लव कहते हैं, प्यार में गिरना कहते हैं, लेकिन यहां प्यार में उठ जाते हैं, उड़ जाते हैं, हम श्रेष्ठ बन जाते हैं। इसलिए इतना गहरा प्यार बाबा से हम अनुभव करें कि जैसे रोम रोम जैसे भर जाए बाबा के प्यार से। हम तो प्यार करते हैं बाबा को, ठीक है, हम बाबा हमेशा कहते हैं मुरलियों में कि प्यार के सब्जेक्ट में सब पास है, हर एक को बाबा के प्रति प्यार है ना। लेकिन लेकिन क्या होता है फिर धारणा में, या फिर दूसरे बाबा की जो भी बात है उसके प्रति प्यार हमारा कितना है, बाबा के ज्ञान के प्रति, बाबा के श्रीमत के प्रति, बाबा के साथ जो जुड़े हैं बाबा के बच्चे उनके प्रति कितना प्यार है, बाबा के साथ जुड़ी हुई जो भी चीज है, जो भी बातें हैं उनके प्रति भी प्यार हमारा कितना है, वो भी देखने की जरूरत है ना। एक है हम प्यार करते हैं, बाबा तो प्यार का सागर है, वो तो प्यार करते ही है, वो तो एक समान, हर एक को एक समान बाबा प्यार करते हैं। बाबा कहते हैं मन के जो माला के लास्ट मणका है, त्रेता युग के जो लास्ट मणका है, उससे भी मैं इतना प्यार करता हूं, बाबा कहते हैं, है ना। तो क्या हम बाबा का प्यार हम अनुभव करते हैं? करते हैं, इतना गहरा हम अनुभव करें क्योंकि बाबा तो प्यार कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस, वो प्यार हम अनुभव नहीं कर पा रहे, कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस क्यों होता है, वो ब्लॉकेजेस को खोलना पड़ेगा, तब जाकर के बाबा के जो गुण है, शक्तियां है, प्यार है, वो फ्लो होगा। तो जितना जितना बाबा के श्रीमत के अनुसार चलते जाएंगे, आत्मा पवित्र होती जाएगी, तो धीरे ज्यादा अट्रैक्शन बाबा के प्रति आकर्षित होती जाएगी। आत्मा जैसे मैग्नेट है, बाबा एग्जाम्पल देते हैं ना, बाबा मैग्नेट है, बड़ा मैग्नेट है, और हमारी बुद्धि में अगर कोई जंक है, वो मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं करता। जितना वो जंक निकलता जाएगा, साफ होता जाएगा, फिर बाबा के प्रति जो हमारा अट्रैक्शन है, आकर्षण है, वो बढ़ता जाता है। तो इसीलिए ठीक है, जितना हम श्रीमद् फॉलो कर सकते हैं कर सकते हैं, लेकिन फिर वो प्यार जब तक हम अनुभव करते जाएंगे, वो फिर श्रीमद् फॉलो करने के लिए भी ताकत, शक्ति हमें मिलती जाती है। बाबा का प्यार ऐसा है, अगर हम रिटर्न में प्यार ना दे तो भी बाबा प्यार करते रहेंगे, है ना। तो ये जो निस्वार्थ प्यार है बाबा का, जो हमें ऊंचा उड़ाने वाले प्यार है, वो हमें गहराई से अनुभव करने की जरूरत है। और नेक्स्ट संबंध है, लास्ट संबंध जो बाबा के साथ का है, उसके पहले जो साजन के साथ जो संबंध है, ये मैं बात भूल गई, सॉरी। बहनों का बाबा के साथ संबंध, साजन का संबंध जोड़ना इजी है, भाइयों का भाइयों का मुश्किल लगता है, क्यों क्यों मुश्किल लगता है? माताएं, कुमारियां, टीचर, उनके लिए सहज है, क्योंकि ये लगता है कि ये बॉडी शरीर है ना। तो बाबा को एक साजन के रूप में याद करना इजी लगता है, भाइयों को क्यों मुश्किल लगता है? क्योंकि वो देह भान अभी तक है कि मैं भाई हूं, है ना, लेकिन आत्मा का कोई जेंडर नहीं है, है ना, कोई जेंडर नहीं है आत्मा का। कभी इस जन्म में भले आप भाई बने हैं, तो कभी भी कल्प में भाई नहीं, बहन नहीं बने क्या आप? कल्प में बने हैं बहन, बने हैं कि नहीं बने? बने हैं ना। तो दोनों संस्कार तो है ना आत्मा में, भाई का भी संस्कार है, बहनों का भी संस्कार है। तो इसीलिए आत्मिक स्थिति में जब हम स्थित होते हैं, बाबा के सजनी बनने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। हम ये नहीं कह सकते बाबा हमारे सजनी है, मैं साजन हूं, ये होगा नहीं। बाबा हमेशा साजन है और हम आत्माएं बाबा के सजनी हैं। तो ये भी प्रैक्टिस करके देखिए, भाइयों के लिए स्पेशली, क्यों ये अभ्यास अगर नहीं करते हैं, तो यही एक संबंध शायद फिर दुनिया के तरफ खींचती है, या क्यों ये संबंध हम अनुभव नहीं करते, तो वो संबंध हम इंसानों में ढूंढते हैं, लोगों में ढूंढते हैं, है ना। इस संबंध की पूरी प्राप्तियां हो जाती, तो आत्मा तृप्त हो जाती है, तो फिर वो संबंध हम लोगों में, इंसानों में नहीं ढूंढेंगे, है ना। तो ये अभ्यास करनी है। लास्ट संबंध जो है बच्चे के साथ संबंध, बाबा मेरा बच्चा है, इस संबंध से क्या प्राप्ति है? आनंद की अनुभूति। बच्चे को देने की बात होती है, बच्चे से कुछ ज्यादा हम लेते नहीं है, जो देने में भाव खुशी होती है ना, आनंद मिलता है, वो लेने में नहीं होता, है ना। तो बाबा को दे, बाबा मेरा बच्चा है, तो बच्चे को क्या देंगे? वो प्यार तो है बाबा को, मासूम बच्चे को देखते हैं बहुत अच्छा लगता है ना, किसी के भी चेहरे में मुस्कुराहट आ जाती है एक मासूम बच्चे को देख करके। बाबा मेरा बच्चा, क्या देंगे बाबा को? बाबा के साथ जो जुड़े हैं, सारा संसार बाबा का है ना। तो बाबा के संसार, बाबा को कुछ तो चाहिए नहीं, बाबा के संसार को हम देते चले, कर्म से, वचन से, मनसा से, सब मनसा वाचा कर्मणा से हम देते जब चलते हैं, आप परम आनंद की अनुभूति करते हैं। योग भी जब हम करते हैं ना, केवल हम लेकर के प्राप्ति की अनुभूति करें, वहां एक स्टैग्नेंटेशन आ जाता है, वहां वो फ्लो रुक जाता है। लेकिन बाबा से लेकर के जब हम दुनिया को देने लगते हैं ना, वह एनर्जी फ्लो हो रहा है। लिया दिया, रुका हुआ पानी सड़ जाता है, लेकिन बहता पानी शुद्ध रहता है। ऐसे हम बाबा से एनर्जी ले रहे हैं, लेकिन मैं अपने लिए सीमित रखूं, ये नहीं होना चाहिए। हम बाबा से ले और दुनिया को बाबा से अनुभूति करें, और देने की भावना जब हम रखते हैं ना, वो फ्लो भी होगा। और जहां जहां भी ब्लॉकेजेस होगा ना, अगर पानी फ्लो नहीं हो रहा है, ब्लॉकेजेस भी खुलते नहीं है, है ना। तो फ्लो जब हो रहा है, हमारे अंदर जो वेस्ट है, नेगेटिव है, जो भी बातें हैं, वो भी निकलना शुरू हो जाए। देते चलो, देते दान करते जाएंगे, तो फिर हमारे ऊपर जो ग्रहचारी बैठी हुई होती है वो निकल जाता है ना। तो देने की भावना जब हम रखते हैं, तो यही रिटर्न बाबा बच्चे के रूप में हम ये संबंध जोड़ करके हम दुनिया को देते चल सकते हैं, है ना। तो ये सातों ही अनुभव सातों गुणों का की अनुभूति कराता है ना? आत्मा संपन्न, सातों ही गुणों से जब संपन्न हो जाती है, वो संपूर्ण बन जाती, संपूर्ण बन जाते तो कर्मातीत, डिटैच्ड। कई बार हमें त्याग बहुत भारी लगता है, छोड़ना बहुत भारी लगता है ना। तो बहुत सारे त्याग तो हमने कर लिया, लेकिन जो मुश्किल लगता है, छोटी छोटी संस्कार जो भी बातें हैं मुश्किल लगता है, तो वो त्याग के ऊपर ज्यादा हमें फोकस करने की जरूरत नहीं, भरने के लिए सोचिए बस। जैसे हलवा जब पक जाता है तो कढ़ाई से जुड़ जाता है, और जब कोई फल पेड़ में पक रहा है, जो पूरी तरह पक जाता है फल, वो ऑटोमेटिकली गिर जाता है। जब तक वो पकता नहीं है, जब तक वो जिसको न्यूट्रिशन जो चाहिए होता है तब तक वो पेड़ से नहीं लेता है, तब तक वो अटैच्ड है, तब तक वो जुड़ा हुआ है। जैसे ही संपूर्ण बना, गिर गया। ऐसे ही हमें डिटैच होने के लिए मेहनत नहीं करनी है। किसका मेहनत करना है? बाबा के साथ अटैच होने की मेहनत बस। जब बाबा के साथ अटैच्ड हो जाते हैं, तो वो जो हमें प्राप्ति होने लगती है, आत्मा संपन्न होने लगती, तो ऑटोमेटिकली किनारा हो जाना, डिटैच हो जाना बहुत इजी हो जाता है, है ना। तो बाबा के साथ अटैचमेंट और दुनिया के साथ डिटैचमेंट, तब इजी हो जाता है, है ना। तो इसीलिए सर्व संबंधों की अनुभूति करते हुए, जब प्यार की अनुभूति हम करते, इतना गहरा प्यार की अनुभूति करते हैं, तो जो डिसिप्लिन है, जो अनुशासन है, वो भी इजी लगता है। कल से बोला जा रहा है ये करो वो करो, भारी लगता होगा आपको ना। मोबाइल स्विच ऑफ करो, यू मौन रखो, ये करो वो करो, बार बार जब डिसिप्लिन की बात करते हैं ना, नियमों की बात करते, भारी लगता है। बाप रे, इतना कुछ करना पड़ता है, इतना टफ है क्या, इतना मुश्किल है क्या पुरुषार्थ? मोहब्बत में मेहनत नहीं लगती, वो डिसिप्लिन के बारे में नहीं सोचे। जब बाबा के प्यार में डूब जाएंगे ना, ऑटोमेटिकली आप स्थिर हैं, ऑटोमेटिकली आपकी बुद्धि कहीं भटक नहीं रहा है, है ना। तो बाबा के प्यार में डूबने की मेहनत कर लो बस, अटैच होने की मेहनत कर लीजिए बस, बाकी सब चीजें इजी होने लगता है, बहुत सहज होने लगता है, क्योंकि उसमें रुचि नहीं है। फिर लगता नहीं है कि किसी से बात कर रहे हैं, क्योंकि हम इतने मस्त मौला ने मस्ती में मस्त हैं कि कोई इसमें फिर जरूरी नहीं लगता है, है ना। तो चलिए थोड़े समय के लिए, अभी 3 मिनट है हमारे पास, ये ऐसा अनुभव कर, आप अपने लिए चूज करें बाद में कि कौन से संबंध अभी तक हमने अनुभव नहीं किया है, वो ज्यादा अनुभव करने की कोशिश करें। लेकिन अभी 3 मिनट के लिए हम केवल ये सर्व संबंधों की अनुभूति, बाबा से सर्व गुणों की प्राप्ति हम कर लें।